जो आदमी मरता है उसकी शक्ति क़यामत होगी। मम मा तपकद कामत क़यामत, जो आदमी मर जाता है उसकी तो शक्ति तौर पर क़यामत इंफरादी क़यामत कायम होगी। एक इज्तिमाई क़यामत है जो सारे आलम के निज़ाम के दरबरम करने के बाद अल्लाह कायम करेंगे। लेकिन एक शख्स का मौत के मुँह में पहुँच जाना ये खुद इस बात की अलामत है कि वो अब सारी की सारी कायनात उसके हक में मुद्दा हो चुकी है। हम लोग देखते हैं
वहां कभी हड्डियां निकल आती हैं, कभी बुरादा निकल आता है, कभी वो चीज भी नजर नहीं आती है। सैकड़ों हजारों खबरों में हम लोग देख लेते हैं गुर्दों को मुख्तलिफ अंदाज से, लेकिन आखिर कैसे पैदा करे गर्दे हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं वो इन्नहु यब्दाउ अल खल्क़ा थुम्मा युईदुहु, बाद में कैसे पैदा करेंगे। तुम्हारे जहनों में ये जो शुबा है इस शुबे का जवाब ये है कि ये गौर करो कि वो पहले कैसा पैदा किए। इसीलिए हजरत हकीम उम्मत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये बात खूब कुरान में कहता है वो अहलों वाले, ये तो अल्लाह के लिए और ज्यादा आसान है। बाद में किसी चीज को पैदा करना ये अल्लाह के लिए और ज्यादा आसान है। क्यों? इसीलिए कि पहली मरतबा पैदा करने में कोई मटेरियल नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब बाद में तो कुछ तो रहेगा ना, हिमालय पहाड़ पर रात को रहेगी, गंगा जमुना में आकर एक रात के कुछ चूरे दर्रे कुछ तो रहेंगे ना, रेल की हड्डी तो रही है, खोपड़ी का टुकड़ा तो रही है, बाल की खाल या खाल की खिचड़ी तो रही है, जिसम का कोई अंसुर तो रहेगा, उंगली का कोई जुर और टोड़ा तो रहेगा, जी कोई दांत रह जाएगा, दिमाग की कोई रक्त रह जाएगी, कोई नाखून तो रह जाएगा। कुछ भी मटेरियल नहीं था तो अल्लाह ताला ने बनाया, जिसको बारी कहते हैं। बारी कहते हैं वो दात जो बगैर मटेरियल के पैदा करने वाली है, अलबारी। तो जो बगैर मटेरियल के पैदा करने वाली दात है उसके सामने जब इंसान के मरने खपने मुख्तलिफ किस्म के हालात में भी तहलील हो जाने के बाद, चाहे हवा में तहलील हो, पानी में तहलील हो, मिट्टी में तहलील हो, मगर कुछ ना कुछ जरूरत तो है, तो इसमें क्या मुश्किल है अल्लाह के हाथ से पैदा करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला वो बता रहे हैं इन नवी अब्दी पहली बार पैदा नहीं करे, फिर बात नहीं करेगा, मानता नहीं मानता। इसको बोलते हैं शुभा का इजाला। इस पूरी सूरत में इजाला ही शुभात है, वो एक हिस्सा हिस्सा इजाला ही शुभात। आदमी के जहन में जो तस्वुरात सजा दें उन तस्वुरात और शुभात का इजाला किया जाता है। अच्छा ठीक है, आप उठाते हैं दोबारा पैदा करते हैं, उनको कुदरत है, उठा के करते क्या हो? ये है ना आदमी के जहन में, अगर उठा के करते क्या है। अल्लाह पाक ये कह रहे लियज़ियल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात बिलक़िस्त, इन पूरे इंसाफ के साथ ईमान वाले नेक अमल करने वाले इंसान को अल्लाह पाक बदला देंगे, बदल देंगे, ये काम करेंगे, वो भी करना नहीं करना। अब वो आदमी कहेगा साहब ये आदमी इम्तिहान दिया है और बेहतरीन अंदाज से कामयाब हुआ है, हम इसको जो है ना एक महीने के बाद ये एक बहुत बड़ा तमगा देने वाले हैं, एक बड़ा तमगा देने वाले हैं, सोने का चांदी का ये और वो गोल्ड मेडल ये वो देने वाले हैं। देना नहीं देना, बिना दे सकते उसमें क्या है, पूरी दुनिया का तो दस्तूर है, अगर आपका दस्तूर है तो क्या वो जी तुम्हारे दिमाग को जो बनाया है आखिर उसके पास भी कोई दस्तूर होगा? नहीं होगा। आप तो किसी को उसकी उसकी मेहनत का सिला देने, उसकी मेहनत को समझाने, उसकी मेहनत की तायीद करने या उसकी मेहनत का कमरा देने या उसकी जगह देने के लिए इकदाम करते हैं, मसरत की लहरों को पैदा करने के लिए उसको रीस दावे के तौर पर कि भाई ये शख्स फला चीज का मुस्तहिक है, ये शख्स फला चीज का मुस्तहिक है, तो फिर अल्लाह ताला भी ईमान रखने वाले इंसानों और अमल करने वाले लोगों को अल्लाह ताला जो चीज देंगे उसे नजर उसकी नियमतें हैं। जैसा ये दखल ठीक है कि उन लोगों के लिए होगा जो अच्छी फिक्र अच्छे अमल करने वाले लोग हैं। आखिर दूसरी सिमत भी तो है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदगी ने कफर जो लोग इनकार करेंगे, अब चाहे वो इनकार कुरान का हो, चाहे वो इनकार अहकाम का हो, चाहे वो इनकार ज़ाते हक का हो, चाहे वो इनकार सिफात बारी का हो, चाहे वो इनकार कुदरत खुदाबंदी का हो, चाहे वो इनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर आपसे मुतअल्लिक़ उमूर का हो, इनका किसी भी किस्म में जब इनकार पाया जाएगा, सही रूप से जब इनकार करेगा आदमी, लहू शराब मिन हमीम, वो उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, सूरज तबादले पर आ जाएगा और इनकी आई शिद्दत और हिद्दत भूख और प्यास के अंदर आदमी बेताब होगा, आखिर उसको प्यास 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 से सारा ही जुबान सूख कर कांटा और हलक बिल्कुल खुश एक पानी के चंद खतरों के लिए तड़प रहा होगा, तो उस मौके पर जब कहेगा कि कोई है जो हमको पिला दे, कोई है जो हमको चंद खतरे पानी के पिला दे, तो कहेंगे कि हाँ हाँ पिला रहे। फिर अब जो आएगा जिस जो चीज़ पिलाने के लिए लाई जाएगी वो बोले शराब मिन हमीम, खौल का पानी, इधर पानी का खतरा मुंह में पड़ा और उधर अंदरियां टक्कर बाहर हो जाएंगे, ये शराब मिन हमीम वअज़ाब अलीम बिमा कानू यकफुरून, और ये सब या दर्दनाक का अज़ाब जो है ये सब कुफ्र की वजह से उनको लाया हुआ, अगर वो कुफ्र न करते बल्कि ईमान से काम लेते, तस्दीक से काम लेते, तहकीक से काम लेते, यकीन से काम लेते, ईमान और आमाल ऐसा लिया करते तो आज ये दिन गुजरना नहीं पड़ता था। फिर अल्लाह पाक कह रहे हैं कि देखो सारे शुबहात तुम्हारे यही है कि आखिर ये चीजें कैसे हो जाएंगी, तो जैसे पीछे बाद आयतों के अंदर कुदरत खुदावंदी की बाद मुशाहिदा जमीन आसमान और तकनीक समावात वल अर्ज के जमीन में अर्ज किया गया, इसी तरह इस आयत के अंदर अल्लाह ने कुछ इशारा दिए हैं। जिसने सूरज को चमकदार बनाया, चांद को पुरनूर बनाया, वकद्दर बना दी उसकी मंजिलें मुकर्रर फरमाई ताकि तुम जान लो सनों और वर्षों की अदद और तादाद और हिसाब और गिनती को, ये सब कुछ जो कुछ पैदा किया है अल्लाह ताला ने बिल्कुल बराबर पैदा किया है, सही तरीके से पैदा किया है, मुफस्सिल आयात यकूमून, ये तफसील के साथ ये आयात और अहकाम दे रहे हैं वो लोगों के लिए जो समझदार है, गरीब सी लेकर समझ मौजूद है और वो थोड़ा सोच विचार से काम ले लें तो अल्लाह ताला के अहकाम बिल्कुल बरमहल मालूम होगा, और खुदा ने अपने कुदरत की बेशुमार निशानियाँ रखी है, थोड़ा बहुत और फिक्र के बाद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सूरज के साथ जिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और कमर के साथ नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और मनाजिल का लफ्ज़ चांद के साथ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए चांद की मंजिलें शुमार होता है, चांद चूंकि शरीर शहर है और सूरज जो है एक साल के अंदर अपने वो जी फेरे पूरे करता है फेरा, और इसी तरीके से चांद के अंदर तो महीने के अंदर पूरे 30 दौरे उसके होते हैं, इसीलिए उनको मंजिलों से तामीर किया गया क्योंकि 48 को छुप जाया करता है, इसलिए 48 मंजिलों की शोहरत हो गई, वरना 29 को भी रहता है 30 को भी रहता है, तो 30 मंजिलें इस तरीके से उसकी शुमार की गई है। ये कमर चंद कमर का जो निज़ाम है या सितारों का जो निज़ाम है, ये साल और बरस कमरी और ईसवी सनों और तादाद गिनतियों को समझने के लिए आदमी को काम लेना चाहिए, ये वक्त और घड़ी घंटे ये जितनी चीज़ें हैं सब के सब इसी से मुतअल्लिक चीज़ें हैं, वक्त के एतबार से ज़माना और मकान ज़माना और वक्त, ये ज़माना भी वही है वक्त भी वही है, मकान के माने जगह के हैं, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से इख्तिलाफ़ अल-लैल वन-नहार वमा ख़लक़ अल्लाहु फ़िस-समावाति वल-अर्ज़ आयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून, متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اس بات میں نشانیاں ہیں کہ اللہ نے دیکھو آسمان کیسے بنا ہے, زمین کیسے بنائی, اور اس میں نشانیاں ہیں اس بات کی کہ دیکھو رات جاتی ہے دن آتا ہے, دن جاتا ہے رات آتی ہے. اس کو اختلاف کہا گیا ہے قرآن مجید میں. یہ ایسا اختلاف نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ اختلاف کا کیا لفظ ہے, تو وہ اختلاف نہیں ہوتا. یہ اختلاف کا مطلب دن کا جانا رات کا آنا, رات کا جانا دن کا آنا, اس کو اختلاف لیل و نہار کہتے ہیں. کئی مقامات کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم من آياتنا غافلون. اچھا ٹھیک ہے, یہاں تک کافی ہے, باقی آئندہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى سلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا على ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. سورہ یونس کی جن آیتوں کو آج پڑھا گیا اس میں سے پہلی آیت تو وہ ہے جس کے بارے میں جمعہ میں کچھ بست و تفصیل سے بیان کیا گیا. تفصیل جہت سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایماندار جو ہوتے ہیں ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں اور اللہ سے ملنے والے ہیں, اور کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام کا یقین یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے نہیں. اس کے بعد انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو
जो अल्लाह से मुलाकात के शौक में ईमान और आमाल सालिहा की जिंदगी को बसर करते हैं और दुनिया में बकदर जरूरत असबाब की लाइन से चलकर वो आखिरत की तरफ रगबत से काम लेते हैं। लेकिन जो दुनियादार होते हैं उनके अंदर दो बातें पैदा हो जाती हैं। एक तो ये है कि आखिरत के यकीन के आखिरत का यकीन जितना ज्यादा कमजोर होता रहता है और या होता रहेगा उतना ही ज्यादा आखिरत से बेरगबती पैदा होगी और जितना ज्यादा आखिरत से बेरगबती होगी दुनिया में इन्हमाक बढ़ता जाएगा और जितना ज्यादा दुनिया में इन्हमाक बढ़ता जाएगा माल की जायदाद की चीजों की मोहब्बत दिल में जगह पकड़ लेगी। उसको कुरान मजीद कहता है वतमअन्नू बिहा और उनका जी लग गया इन्हीं चीजों में। ये बात फिर फरमाया वल्लदीन हुम अन आयातिना गाफिलून हमारी निशानियों से लोग बेखबर रहते। निशानियों से मुराद आयात से मुराद कभी लिया जाता है मौजज़ात और कभी लिए जाते हैं आयात कुरान और कभी लिए जाते हैं निशानियां और कभी मुराद लिए जाते हैं अहकाम कुरान। ये मुख्तलिफ एतबारात हैं मौके महल के मुनासिबत से उस मज़मून को मरबूत कर दिया जाता है। ये जो दुनियावी जिंदगानी पर लपक कर उसी को सब कुछ समझ कर या उसके साथ जी जान से उसमें लगना खपना ये गाफिल होने की अलामत है और बिल्कुल ही अकाफिल हो जाना जहन्नमी होने की अलामत है। इसीलिए एक आदमी के लिए ये बात वाजिब है कि वो दुनिया में इस तरह रहे कि लोग खुद से समझ सके या लोग ये समझ सके कि ये शख्स दुनिया के लिए नहीं पैदा किया गया बल्कि दुनिया इसके लिए पैदा हुई है और लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि ये सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बल्कि ये और दूसरे बहुत ज्यादा कामों के लिए पैदा किया गया है। ये एहसास तमक मतलब ये तमक कुछ में आ जाना चाहिए। तो अब दो किस्म के लोग होंगे, ये तो ये जी जान से दुनिया में खपने वाले और दूसरे आखिरत को सामने रख के चलने वाले। वो लोग कौन होते हैं कुरान मजीद उसका बयान करता है इन्ना लज़ीना आमनू वअमिलु सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम। अहले ईमान और अहले आमाल सालिहा के लिए उनका परवरदिगार उनको ईमान के वसीले से उन्हें हिदायत देगा। ये हिदायत का क्या मतलब है? यहाँ पर जन्नत मुराद है, राह जन्नत और जन्नत अल्लाह ताला उन्हें मंजिल पर पहुंचाएगा। कौन सी मंजिल? जन्नत वाली मंजिल, यानी उन्हें राह जन्नत दिखाएगा। वहाँ क्या है? तजरी मिन तहतिहिम अल-अनहार, उन बागों के नीचे से नहरें बह रही होंगी। फी जन्नतिन नईम, इस नियमतों वाली जन्नतों में होंगे, आराम देने वाले बागों में होंगे। दावा हम फी है, जैसे दावा का लफ्ज़ कुरान मजीद में जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है ये उस मफहूम में नहीं है जो आमतौर पर दावा का लफ्ज़ सामने आने के बाद कोई मुकाबिल अपने मुकाबिल वाला कोई हरीफ अपने मुकाबिल वाले के लिए किसी मुकदमा की लाइन में दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो मुराद यहाँ पर नहीं है। यह दुआ के मफहूम में दावा हम फी है सुखान जन्नतों के अंदर बाबा ने जन्नत की उन नेमतों में अहले ईमान की जो दुआ होगी वो कैसे शुरू होगी? सुभानक अल्लाहुम्मा सुब्हे अल्लाह तेरी रात पाक है। मुफस्सिरीन में लिखते हैं कि कलाम का आगाज तंजीह से होगा और कलाम का अख्तिताम तहमीद से होगा। सुभानक अल्लाहुम्मा कलाम का आगाज होगा وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله اختتام کلام ہوگا۔ گویا شروع سے لے کر آخر تک سلام ہی سلام کی بات ہوگی۔ شروع میں تنزیہ بیان کی جائے گی، آخر میں تحمید بیان کی جائے گی، यानी यूं कहा जाएगा कि शुरू में यूं कहा किया जाएगा कि ए अल्लाह तेरी जात पाक है, ऐबों से, नफ्स से, जबान से और अपने किस्म के नकाइश से, उयूब से, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, तंजीही शान का बयान होगा और उसके बाद आखिर में तहमीदी शान का बयान होगा जिसमें हमदला होगा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो चाहिए तो हूँ यहाँ सलाम और उनमें जन्नतों और बागात में उनका आपस में मुलाकात का कलीमा, चाहिए बोले तो मुलाकात ही कलीमा, जैसे कहते हैं ये मरहबा या कहा जाता है अहलन सहलन, यही कहा जाता है वेलकम, इस तरह खुश आमदे, इस तरीके का जो मुलाकात ही कलीमा होता है किसी को मुबारकबादी देने के लिए वो तहिया कहा जाता है उसको कुरान मजीद के लफ्जों में। तो वहां पर जो तहिया होगा मुलाकात ही कलीमा जो होगा जन्नत के अंदर सलाम, ये सलाम जो है तीन तरफ से होगा, एक अल्लाह की तरफ से, दूसरा फरिश्तों की तरफ से, तीसरा जन्नतियों की तरफ से। अल्लाह की तरफ से क्या सलाम होगा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, मेहरबान परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे ऊपर सलाम की रहे, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम ये कहे। और फरिश्तों का किस अंदाज का सलाम होगा, वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब अन सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उकबद्दार, फरिश्ते आ रहे होंगे और आसपास में घूम रहे होंगे और आसपास में फिर रहे होंगे और हर दरवाजे से दाखिल होकर कह रहे होंगे कि तुमने अल्लाह के अहकाम पर जमे रहकर बहुत बड़ा अच्छा मुजाहरा किया, उसके सिले में अल्लाह पाक ने तुम्हें जन्नत अता फरमाई है, लिहाजा अब तुम सलामती के साथ हमेशा हमेशा की सलामती के साथ लगे रहो, ये सलामती में मौजूद रहे। वल्मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाबिन सलामुन अलैकुम फनिअमा उकबद्दार, बिमा सबरतुम फनिअमा उकबद्दार, बेहतरीन जी सलामती के अल्फाज होंगे। और आपस में जन्नतियों का सलाम कैसा होगा, या तो ये कहेंगे सलामन सलामन, या ये कहेंगे अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, बस यही होगा। वहां पर कोई लगो बात, कोई बेहूदा बात, कोई गाली गलोच, ऐल फैल, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की कोई चीज नहीं होगी, कोई जरी सी भी जबान की कोई लंगिश वहां पर नहीं होगी, न किसी की गीबत होगी, न किसी की चगली होगी, न किसी के किसी का इजहार होगा, न अदावत का कोई तलफ़ुज़ इस्तेमाल करेगा, न कोई दुश्मनी का कोई लफ्ज़ होगा, कोई जुबान पर कोई बुराई किसी तरह की कोई बुराई नहीं होगी। फ़क़ालु सलामन सलामा वाख़िरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जो मजलिसें होंगी आखिर में अल्लाह ही की तारीफ पर खत्म होगी, आपस में मुलाकात होगी, एक जन्नती की दूसरे जन्नती से मुलाकात होगी, एक जन्नती की दूसरे जन्नती से मुलाकात होगी। मुलाकात की जो भी शक्लें हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने मारिफ़ुल कुरान में बहुत तफसील के साथ जन्नतियों की मुलाकात की शक्लें बताई है कि नबी से अंबिया से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, और सिद्दीकी में उम्मत से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, शुहदाए उम्मत से मिलेंगे, ऊपर के दर्जे के लोग मिलना चाहेंगे तो हम लोगों से कैसे मिलेंगे, या हम लोग निचले तबके में रहेंगे हम ऊपर के लोगों से मिलना चाहते हैं तो दर्जा के दरमियान में किस तरीके का तफावत होगा, आपसे मिलने की क्या शक्ल होगी। तो अल्लाह ताला कुछ ऐसी राहें हमवार कर देंगे कि जिसकी वजह से एक दूसरे का मर्तबा भी बरकरार रहेगा और किसी किस्म का दिल, किसी किस्म का खेत या कोई और दिलों के अंदर मौजूद नहीं रहेगा। खुद इस दुनिया में भी एक ईमानदार के लिए जो दुआ करना है यही दुआ करना है कि किसी के सीने में किसी की तरफ से कोई कीना न रहे। ला तजअल फी कुलूबिना ला तजअल फी कुलूबिना ज़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, अल्लाह किसी भी ईमानदार शख्स के बारे में मेरे दिल के अंदर कोई और पैदा मत कर, ये दुआ करनी है यहाँ पर। फिर वहां तो अल्लाह ताला खुद निकाल देंगे वो जन्नतियों के दिलों के अंदर से जरा सी भी अगर कुछ गर्द होगा, गुबार होगा, मैल कुचैल होगा, होता है ना हल्का फुल्का, जिस अंदाज से भाई उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा देखा था, उन्होंने ऐसा कहा था, या मेरे जहन में बात याद आ गई, ये हुआ वो हुआ, इस किस्म के हालात रहते हैं, वो वहां पर इस तरह की चीज नहीं होगी। वो सारा गर्द गुबार बना के अब हम मंजूर जब गुबार कर दिया जाएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरे शफाफ आईने की तरह दिल रखने वाले होंगे। बहुत अजीब हाल होगा जन्नती का। आशुलाही मेहती ने अपनी बात किताबों में लिखा है और हमने मौलाना रहमतुल्ला रहमतुल्लाह से ये दिल्ली के अंदर पहले ही बुजुर्गों में से उनका इंतकाल हो गया। वो आमतौर पर तकरीर करते थे, फरमान करते थे कि अल्लाह पाक जन्नती को इस अंदाज से रखेंगे कि जन्नती जन्नत में जो मर्द आदमी होगा और उसके लिए जो हूर दी जाएगी तो एक दूसरे के कुलूब में दिलों में अपना चेहरा देखेंगे, इतनी शफाफियत होगी, आईने की तरह होगी। मतलब ये जिल्द है, इस जिल्द में से गोश्त नजर आएगा, गोश्त में से हड्डी नजर आएगी, हड्डी में से कुछ नजर आएगा और ये जो नजर आएगा ये 70 लिबास के अंदर से नजर आएगा। 70 लिबास पहने हुए होगा इस जन्नत मर्द या औरत और हर कपड़े का रंग जुदा होगा, तो ये जुदा जाना होगी, लेकिन 70 कपड़ों के अंदर से बराबर पूरा जिस्म नजर आएगा। तो चाहे वो मर्द हो या औरत, एक दूसरे के कलेजे में अपनी तस्वीर देखें, इतनी शफाफियत होगी। तब ये खेत और दिल और इस तरह की चीजों का तो बिल्कुल पता नहीं रहेगा। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا یہ نظر ابن حارث حضرت جیسے کمینوں نے ایک بات کہی تھی، بات یہ تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، چلو ٹھیک ہے، اے اللہ تو عذاب اتار دے، ہم نہیں مانتے تیرے کو، تیرے نبی کو، تیرے کلام کو، اگر اللہ پاک جلدی کر دے لوگوں کو اس عذاب میں، استعجا لہم بالخیر، جس طریقے سے وہ لوگ کسی اچھائی اور بھلائی کے بارے میں اجلت پسندی سے کام کرتے اور جلدی سے کسی بھلائی کو مانتے ہیں، اگر انہی کے تقاضے کی بنا پر اگر اس طریقے سے عذاب اللہ پاک نازل کر دے تو لقضی الیہم اجلہم، تو کبھی کہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، جب ہی کہ وہ بات ختم ہو چکی ہوتی، فیصلہ ہو چلا ہوتا۔ یہ دنیا ایک تمہیل ہے، ہاں ڈھیل ہے، ڈھیل، یہ ڈیل ہوتی ہے۔ آج میں سمجھتا ہے کہ میں خوشیاں منا رہا ہوں، لیکن اس خوشیوں میں کتنے غم پوشیدہ ہیں، بس وہ تو پٹا سے ختم ہونے کے بعد معلوم ہوتا۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی کے اندر سرگردہ رہے۔ سرکشی طغیان ہی عمہون ہے، سب کا سب ہے نا، طغیان اور سرکشی، حدود حکم حکم کو کلام کے آگے نکل جانا، یہ سارے کے ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اندھا بنا دیتی ہے اور اسی میں حیران سر گردان رہتا ہے۔ انسان کی حالت بڑی عجیب حالت ہے۔ اللہ پاک نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عجیب انسان ہے۔ اگرچہ یہاں پر خاص طور پر کفار مراد ہے، خود تخصیص کے اعتبار سے اور اوصاف کے اعتبار سے امیت مراد ہے۔ فرمایا اللہ نے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے یا کوئی ضرر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کہتا بیٹھا بھی، لیٹا لیٹا بھی، نجم بھی ہی، پہلو کے بل بھی، او قائدن بیٹھے بیٹھے بھی، او قائمن کھڑے کھڑے بھی، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے، جب مشکل آ گئے اللہ ہی وسلے ہی کچھ کرنا ہو، ہے نا۔ پلما کا جتنا عنہ بول رہا ہوں، اور جب وہ اس کی اس مصیبت کو دور کر لیتے، مرد تعلم میں جاؤں نہ مسا، وہ اس طریقے سے گزر جاتا ہے جیسے اس کو کسی تکلیف سے نہیں چھوا اور اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں۔ یہ صورت حال ہے، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اسی طریقے سے اسراف کرنے والے اور زیادتی کرنے والے اور اسراف سے کام لینے والوں کے لیے عمل مزین بنا کے پیش کیے جاتے ہیں. یہ جو پٹاخوں کی جو آواز ہے نا, یہ سب تو سب مصرف ہے, بالکل یہ حرام ہے, اس میں کوئی ایک نئے پیسے کا بھی فرق نہیں ہے. یہ آدمی کے ذہن میں رہتا تھا اس میں کیا ہے خوشی کی بات ہے, چلو ایک پانچ پیسے دس پیسے کا پٹاخا چھوڑ دیں گے. اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آپ کو اگر میں 100 کا نئے نوٹ دے دوں اور یہ کہوں کہ بھائی دیکھو ذرا سا آپ کے پاس لے جا کے جلاؤ اس کو چولہے کے پاس, برداشت کر دے کسی بچے کو, کسی بڑے کو, جوان کو, بوڑھے کو, مرد کو, عورت کو, نہیں یہ 50 کی نوٹ ہے اس کو لے جا کر آپ کے پاس لے جا کے لو کو لگا دے. اگر لگا دے واقعی بچہ تو ہر دس منہ تو یہی رہے گا کہ پاگل بنے گا, مگر پھر یہ کیا ہو رہا ہے جی, پاگل بنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, ان کے حد سے زیادہ پاگل پر نمبر ون دیوانگی کا حال ہے. پیسوں کو آگ لگانا اور پٹاخا بجانا دونوں باتیں ایک روپے کا نوٹ برداشت نہیں کر سکتا آدمی, جلتا ہے, تکلیف ہوتی ہے اس کو, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کس طریقے سے جلائے جائیں اس میں بھی کس کی, کوئی آدمی دل کا مریض ہے, کوئی آدمی دماغ کا مریض ہے, کوئی آدمی جی کوئی بیوا تڑپ رہی ہے, کوئی یتیم تڑپ رہا ہے, کوئی لڑکیاں تڑپ رہی ہیں, ایسی صورت حال میں جو بدوائیں لے جائیں گی آدمی سمجھتا ہے کہ وہ خوشیوں میں سانس لے رہے ہیں, یہ خوشیاں تو بس آنند فانند آئیں گی بھی چلے جائیں گی بھی, اور اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے نفت کے وقت بھی کل شدید جب پکڑ ہوگی تو جب معلوم ہوگا. ہم تو کیا بس سجا دیے تھے سب, یہاں سے وہاں تک سجا دیے تھے. انسان جو کچھ کرتا ہے اس کو سجا ہوا محسوس ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بہت سجا کے کام لیا ہو. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ برس تھا برس نہیں, صدیوں سے صدیوں سے امتوں میں کرموں میں ہوتا رہا ہے. ہم نے امتوں کو جماعتوں کی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ان شروع سے پہلے جب بھی ان لوگوں نے ظلم کیا. یہاں پر ظلم سے مراد خوب رہے لیکن وہ اپنے کیے کو برابر حکم دے گا. وجہ تم رسول مل گئی نا, اچھا پھر ایسا چلو بھائی کیوں کر رہا ہے, ایسا باطل ہے جاہل ہے, ایسی بات بھی نہیں. نبی آئے, رسول آئے, کتاب آئی, احکام آئے, بتانے والے آئے, سمجھانے والے آئے, سمجھائے منائے سب کچھ ہوا, موجودہ سارے سمجھائے گئے دکھائے گئے, اس کے بہت معاملے کو قوم تیار ہے. اللہ اس حال میں لوگوں کا حال ہے جہاں تم رسول مل گئی نا, تم کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آئی اور ماں کا لوگ پھر بھی ایمان لاتے ہیں, پھر بھی نہیں مانتے. فذلك نجزی القوم الظالمین, اسی طرح جرم کرنے والے لوگوں کو سزا دیں گے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم, یہ کیا ہے, اب جو قوم نظر آ رہی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ رہے, اگر اللہ کی فرما بردار بن کر رہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, نہیں تو اللہ کو دیر نہیں لگتی یہ تختہ پلٹنے میں. بس ادھر انہوں نے ادھر کایا پلٹی اور ایک دوسری قوم اللہ پاک پیدا کر لیتے ہیں. اس کو کہا گیا جعلناکم خلائف فی الارض, جیسے پہلوں کو ہٹا کر ہم نے تمہیں رکھا, پھر تم کو ہٹا کر تینوں کو رکھے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ مشکل کاری تو ہم لوگوں کو خبر پڑی ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لنظر کیف تعملون, کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کو, اس تاریخ کو, قوموں اور ملتوں کو, قوموں کے ان حالات کو صبر رکھنے کے بعد, سننے سمجھنے کے بعد, کم سے کم کچھ عقل آتی یا نہیں آتی, ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ماننے والے کون ہیں نہیں ماننے والے کون ہیں. لنظر کیف تعملون, یہ ہے ان آیتوں کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے कि हम जो अमल कर रहे हैं उन अमल के अंदर कहीं सीमतकारी ऐसी तो नहीं है जिसमें इसराफ छुपा हुआ हो, या ये कि इसराफ के सखावत के नाम से हम इसराफ में उतला हो रहे हैं। इस हराम कार्यों से बचना चाहिए। और दूसरी बात की मालूम होती है कि जब भी दुनिया के अंदर जुलूम सितम होता रहा, अल्लाह पाक फौरन उनको पकड़ते नहीं, तमहील करते हैं, ढील देते हैं। लेकिन जब फिर पकड़ते हैं तो फिर मोहलत नहीं देते, आधी गिरफ्त में आ जाता है। इसलिए उन अजाबों के आने से पहले अपने आप को बचाना संभालना चाहिए, तौबा के जरिए से, इस्तिग़फ़ार के जरिए से, कलिमे तैयबा के इक़रार के जरिए से, ईमान और आमाले सालेहा के जरिए से। और तीसरी बात, खासतौर पर जो ऊपर की आयतों में बताई गई है कि आदमी को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर अल्लाह ने अगर ये शख्स ऐसा बुरा है तो इसको अज़ाब क्यों नहीं करता, अज़ाब नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि वो आदमी अच्छा होगा। ये ऐसा सोचना सही नहीं है। उसके ऊपर वो इस्तिला और आजमाइश उस वक्त अज़ाब उस वक्त आएगा जब अल्लाह ताला चाहेंगे, उस वक्त नहीं आएगा जब हम चाहेंगे। अगर वैसा होता रहा तो मैं जब चाहूँ उस वक्त किसी के ऊपर अज़ाब आ जाए, बाकी तो खुदाई का दावा ही करने बैठ जाएंगे। देखो साहब, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे मैं इधर दुआ किया और उधर सारी काया पलट गई, मैं इधर जुबान से बात निकाला और उधर सारा काम इस तरीके से हो गया। मुख्तलिफ किस्म के दावेदार दुनिया के अंदर पैदा हो जाएंगे। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारी गंदी बात पर अल्लाह ताला उस चीज को जाहिर करें। वो मुख्तार कुल है, वो चाहे जब चाहे जाहिर करें, जब चाहे किसी को जाहिर न करें। ये और चौथी बात यह है कि हम राहत वाली हालत पर भी अल्लाह की तरफ रुजू रखें, मुसीबत वाले हालात में भी अल्लाह की तरफ रुजू रखें। काफिरों और बागियों की तरीके से नहीं होना चाहिए कि जब कोई मुसीबत आ पड़ती है तो पलटे, और जहाँ मुसीबत दूर हुई ऐसा मालूम होता है कि कभी ये शख्स हट गई नहीं था और हमारी तरफ दुआ के लिए आया ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चंद आयतें हैं, चंद नसीहतें हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुनफ़िक़ को भी अता फरमा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. इन आयतों में खुदा के बागी और काफिर और नाफरमान इंसानों की बदअकीदगी का दर्द गिरा है, तो उसके बाद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अलावा वो लोग इसी चीज की इबादत करते हैं जो उनके लिए ना नाफे है ना जार, ना नफा पहुंचता उनको किसी चीज से और ना नुकसान पहुंचता उनको किसी चीज से। तो फिर एक ऐसी चीज जिसमें ना नफा हो ना नुकसान, उसमें असलन नफे और नुकसान की वो चीज़ मालिक नहीं, फिर किस तरीके से वो लोग उसको अपना माबूद समझते हैं, वह हैरत की बात, यानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात उनके नजदीक काबिल फहम है, वो अपनी दानिश में ये समझ रहे हैं अपनी हिमाकतों की वजह से, कि वो लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें जिनकी हम परस्तिश और इबादत कर रहे हैं, ये अल्लाह के नज़दीक हमारे सिफारिशी और शफी बनेंगे। शफात का मज़मून बहुत सी जगहों पर आया है और बहुत सी जगहों पर आएगा, उसकी अपनी तफसीलात हैं, मुस्तकिल मौजू है और उसको बहुत ही मुर्तबित मरबूत और मुंतबित अंदाज पर जिक्र में आया है इससे पहले और आइंदा भी आएगा। यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है कि मुशरिकीन और कुफ्फार अल्लाह के अलावा जिन चीज़ों की इबादत पर परस्तिश करते हैं, तो उनके दानिश में वो ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ें या वो अफराद या फला फला चीज़ अल्लाह के नज़दीक हमें अजाब से छुटकारा दिलाने में मुमित और मादुम साबित होंगे, दूसरे नामों में वो हमारे सिफारिश होंगे। कुल अतुनबिकून अल्लाह बिमा ला यअलम फिस्समावाति वला फिल अर्ध, आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, क्या अल्लाह के बारे में ऐसी बात का तज़किरा कर रहे हैं जिसको अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह के इल्म में भी जो बात नहीं है, क्यों वह जरूरी बात तुम लोग उस जात की तरफ मंसूब करके थोप रहे हो, अल्लाह के इल्म ही में नहीं है ये चीज़, यानी क्या मतलब, अल्लाह ताला जानते हैं, और जानने क्या मतलब, ये दुनिया की कोई भी चीज़ नफा और नुकसान नहीं पहुँचाती, और गैरुल्लाह की इबादत और परस्तिश करने की वजह से वो गैरुल्लाह उनका कोई सिफारिश ही बनने वाला नहीं, बल्कि वो रद्द करने वाले होंगे कि हमने न कभी इनको तलकीन किया, न तालीम की, न इनको कोई इस तरीके की बात बताई, कुछ भी नहीं है, ये लोग अपने दानिश से इस तरीके से आगे बढ़कर काम करते रहे। पर हकीकत वो लोग शिरकियात में मुब्तला हो गए। अल्लाह ने कहा सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून, वो लोग जिस शिर्क में गिरफ्तार हैं उससे अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक बहुत ही पाक है। وَمَا كَانَ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً, शुरू शुरू में ऐसा होता था सारे के सारे लोग एक ही उम्मत थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ लाए उस वक्त उम्मत एक ही उम्मत कहलाती थी, वहाँ कोई अकीदों का कोई तफरका नहीं था। फिर जो है ना रफ्ता 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 जब नसीब बढ़ने लगी, यहाँ तक के दौरे में आया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब दौर आया, तो उसके बाद से पासपोर्ट पर इलाके के एतबार से, फिक्र के एतबार से, फहम के एतबार से, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आईं, रिहाइश में, रहन सहन में, मुआशरत में, कारोबार में, मामलात में और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में, फिर ख़ास तौर पर इल्म सही ही नहीं होने की वजह से फिक्र के अंदर कच्चापन, फिर झूल, फिर बदरदगी में गिरफ्तार होकर लोग कुफ्रियात और शिर्कियात में गिरफ्तार हो गए। फिर उसके बाद में अख्तलाफ हुआ हुआ वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिक लक़ुदिया बैनहुम फीमा कानू फीही यख्तलिफून, अब वो जैसे गुज़िश्ता आयतों में ये बात कही गई कि भाई अगर अल्लाह हम लोग गलती पर हैं तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर अदाब नाजिल करने दो, कि जिस तरीके से बाद मुशरिकीन ने ये बात कही थी, तो अल्लाह ताला ने वो बात वहाँ फरमाई और ये बात यहाँ इरशाद फरमाए कि अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अगर ये बात कही न चुकी हो न हो चुकी होती, यानी क्या मतलब, अल्लाह ताला को जब मंजूर होता है जब अदाब होता है, नहीं कि तुम जिस वक्त चाहते हैं उस वक्त अदाब होता है, और अल्लाह का मंशा ये है कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी में उनको अदाब का खुसूसी मज़ा चखाया जाए और हमेशा हमेशा के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ये दुनिया के अंदर हो सकता है उनके लिए कोई ढील से काम लिया जाए, ये तुम्हारे कहने की वजह से अल्लाह ताला को दबेल दबेल नहीं है कि तुमको जब कह रहे हैं तो तुमको गिरफ्तार ही कर लिया जाए, ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अदाब आए, अगर ऐसा होता तो कभी के फैसला हो चुका होता जिस चीज़ में वो लोग झगड़ रहे हैं। उन लोगों का कहना ये था कि जब अल्लाह ताला की तरफ से ये बात आई है तो भाई हमारा मुताला वाली है कि ऐसा मौजूदा होना चाहिए, ऐसी निशानी होनी चाहिए और ऐसा कोई खर्च आदत काम मामला जरूर पदीद होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कहते हैं कि उनके परवरदिगार की तरफ से कोई आयत निशानी मौजूदा क्यों नहीं उतरा। क्या मतलब कि हम तुम्हारे दबेल चबेल हैं कि तुम जब बोलेंगे कोई मौजूदा उतारे तो उतारे, या हमारे लिए कोई जरूरी है क्या? अरे बीसियों मौजूदा तो काट चुके, कुराना में भी जैसा मौजूदा आ चुका, अब क्या और मौजूदा तलब कर रहे हैं? तुम्हारे दिल में असली मानना नहीं है। जब आदमी की तबीयत में मानना नहीं होता तो कहना शुरू कर देता, नहीं वो ठीक है लेकिन और दलील लाओ और सबूत लाओ और वो मौजूदा लाओ, कोई निशानी बताओ, ये ऐसा कर दो वैसा करो, हम भी देखेंगे आप कितने पानी में हैं। इसी तरह की बातें शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फकुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, गैब का सारा मामला अल्लाह के हाथ में है, फंतज़िरु तुम भी इंतजार करो, इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। नबी ये कह रहे जो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ तो अल्लाह के अख्तियार में, वो जब चाहे अदा उतारे, जब चाहे न उतारे, जब चाहे आयत और मौजूदा उतारे, जब चाहे न उतारे, उसकी अपनी मंजर अल्लाह ताला की कुदरत और कुव्वत की बात है। तुम इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا, اور جب ہم لوگوں کو تکلیف کے بعد کچھ رحمت کا اور مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں, مَسَّتْهُمْ ایسی تکلیف جو ان کو پہنچ چکی, إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ, تو وہ نئے نئے داؤ پہ کھیلنے لگتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور قوت اور قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو آیات ہیں اور احکام ہیں, یہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے دعو پہ کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ قول اللہ اکرم مکرا, آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو مکر ہے, اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے, تو کیا تدبیر کو مکر بولتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین کا بھی وہی مطلب ہے, اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تصویریں ہیں وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ترین ہوتی ہیں, ہے نا؟ یہ مکر کا اردو والا لفظ نہیں ہوتا, اردو میں جو لفظ مکر کا استعمال کیا جاتا ہے محاوراتی طور پر, وہ فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اردو کا محاورہ یا عربی پر چسپان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مستقل تفسیر کا اعتبار ہے۔ یہاں پر کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک خفیہ تدبیر کرتی ہے اور وہ ایسا جی وہ ایسی تدبیر کرنے والی ہے کہ اس سے زیادہ تیز تر کسی اور کی تدبیر نہیں۔ قول اللہ اسرع مکرن, اللہ سب سے زیادہ جلد بنا سکتا ہے تدبیریں اور اس کی تدبیریں بہت تیز تر ہوتی ہیں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون, بات یہ کہ تم لوگ جو داؤ پہ کھیل رہے ہو, تم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہے نہ کچھ کام کر رہا ہے, ارے تمہاری ایک ایک حرکت نقل کروا رہا ہوں۔ ہمارے جو رسول ہیں, یہاں رسول سے مراد وہ رسول اصطلاحی نہیں بلکہ یہاں رسول سے مراد خاص طور پر وہ فرشتے جو بھیجے گئے, جن کا کام یہ ہے کہ جو شخص جو عمل کرتا ہے اس کو نوٹ کر لیا جائے, لکھا جائے۔ ان رسول کبھی وہ ملائکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر تفسیروں کی روشنی اور موقع اور محل سیاق و سباق بتاتا ہے کہ کس لفظ کی جو مراد ہے وہ مراد اس موقع پر کیا ہے۔ ہمارے رسول لکھ لیتے ہیں جو کچھ تم مکاری کر رہے ہو, جو کچھ تم تصویروں سے کام لے رہے ہیں اور جو تم مکر سے کام لے رہے ہو, ہمارے جو پیغمبر ہیں بھیجے گئے ہیں یعنی فرشتے, جن کا کام ہی انسانوں کے اعمال کو لکھ لینا ہے, وہ فوراً فوراً لکھ رہے ہیں۔ اور ہم ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے, کب دینا ہے, کیسا دینا ہے, کس کو جزا دینا ہے, کس کو سزا دینا ہے۔ اور اگر تم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کون سزا دے گا, کون ہم کو تباہ کرے گا اور کون ہمارے پیچھے پڑے گا, کون بچنے کے بعد جو ہے ہماری ہڈیاں بچنا ہی ہونے کے بعد کون ہم کو سزا دے گا, اس قسم کی اگر خدشہ ستا رہے ہیں یا وسوسے ہے تو سن لو یہ بات کہ اس ذات کی قدرت کو سمجھو۔ وہ الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہ ذات ہے
जो खुश्की उस शरी में वो तुमको चलाता और गिराता है। खुश्की में कौन गिरा रहे हैं? अल्लाह ताला। और शरी में कौन भगा रहे? अल्लाह ताला। हत्ता इलाकों में बिल्कुल यहाँ तक कि बहुत सी मतलब ऐसा होता है कि तुम कश्तियों में हो तो पानियों के ऊपर जरे नबी हिंद रिहिंद तय्यबा, और वो कश्तियाँ ऐसी हैं कि पाकिदा और अच्छी हवाओं के जरिए से उन कश्तियों को ले चलती हैं, और हवाओं के जरिए से वो कश्तियाँ चलने लगती हैं, और फिर ये टूट यहाँ और सारे के सारे खुश हो जाते हैं एकदम, इतनी फरहत इतनी फरहत, ये क्या शानदार सफर है, कितना उमदा, कितना अच्छा, कितना आला, कितना ऐसा और कितना वैसा। फिर एक तेजोतुल हवा का झटकड़ आया, मकान फिर चौतरफ से जब उनके लिए मौजे आकर उन्हें अपने ये आनंद फानंद अपने घेरे में उनको ले लिया, और उनका गुमान ये हो गया है कि अब फंसे बुरी तरह। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो उस वक्त अल्लाह को खालिस होकर पुकारते हैं, अल्लाह को खालिस होकर पुकारते हैं, सारे गैर का सब छूट छाट खत्म हो जाते हैं, कोई काम देने वाला नहीं होता, बस बिल्कुल आखिरी नुकसान पर पहुंच जाता है आदमी, कहता है बस कौन बचाते हैं, अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही अल्लाह। वो ये तबा शुरू से ही रख लिया तो तौहीद का कितना अलमबरदार हो जाएगा आदमी, लेकिन नहीं, दिमाग खराब रहता है, सारी चीजों के पीछे पड़ा रहता। अगर इस इब्तला से परवरदिगार अगर आपने हमको नजात अता फरमा दी, बचा लिया, तो हम लोग बराबर तेरे शुक्रगुजार हो जाएंगे, जरूर से जरूर शुक्रगुजार होंगे। जब अल्लाह ताला उन्हें नजात देते हैं, छुटकारा दिलाते हैं, उसी को तंगी से निकाल देते हैं, उनके लिए फरहत का सामान कर देते हैं, तो जब वो ना फिलना नहीं देते, अल्लाह बस ना हो जाने टिकाने लगते हैं, तो कौन बचाए, कौन बचाए? अब किसका भी नाम लेता है, किसी बली का नाम ले लिया, किसी पीर का नाम ले लिया, किसी किसी का नाम ले लिया, किसी का नाम ले लिया, अपनी तकदीर से बचता रहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो गया था, बचने के बाद बोल रहा है तो मैं वैसा नहीं करता तो गया था। अब अपनी दानिश से समझ रहे हैं कि मैं खुद ने अपने आप को वही ही ने बचाया है, वो भी गलत थी, गैरों की तरफ इंतजार कर रहा है बचाने का, वो भी गलत है। और हकीकी बात यह है कि अल्लाह ताला नजात अता फरमाते हो रहा, तो जब इंतहाई चीज को तंगी पेश आ जाती है तो उस वक्त एक अल्लाह याद आता है, और जब वो सारी चीजें दूर हो जाने लगती हैं तो कितना आजादी करने लगता है आदमी का अजीब हाल है। या जो हमने फिंदमा बकरी घुमाया हम किसी को अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारी कोई शरारतें हैं ना तुम लोगों की, इसका अभाव तुम्हें लोगों को भुगतना पड़ेगा, मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम बात ऐसी चीज का शिकार होंगे तो तुम अपना अभाव भूल देंगे, हमको क्या करने का है, बचाओ हयात दुनिया। बात दरअसल ये कि दुनिया इसकी जिंदगी के सामान के पीछे पड़ गया, जी मां दौलत ये वो इस तरह की चीजों में भी झपड़ा हुआ है, वो एक प्रयत्न की चीज है, आर्थिक तौर पर जी और मुआवजी तौर पर इस्तेमाल करने की एक चीज है। अब उसको ये समझना कि अब मैं मेरे लिए ये चीज दायरी हो गई दायरी और हमेशा हमेशा की अगली अपनी, ऐसा नहीं है, ये एक आदमी मुआवजी महदूद पैराए में काबिल इस्तेमाल चीजें हैं, मता बोले तो ये बकदर जरूरत इस्तेमाल की चीज जो कुछ आप कर रहे हैं उसको हम बता देंगे कि कौन क्या कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे कि बुरा कर रहे थे, कौन कितना कर रहा था सब बता देंगे। इन नमो मतलब दुनिया की जिंदगानी की मिसाल ऐसी है जैसे पानी ने जिसको हमने आसमान से बरसाया, बसलत अभी ही फिर उसे रिला मिला निकला सब्जा, जमीन का सब्जा उगाया, हिम्मत अकुल जिसको लोग भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, यहाँ तक कि जब जमीन ने अपनी जीनत को ले लेती है तो जैनत और बहुत ज्यादा मुजैन हो जाती है, और वो जमींदार और जमीन वाले पूरे समझते हैं हम काबिल आले हा कि बस सब अब हमारे पूरे के पूरा फेवर में आ गया है, ये खेत ये बाग और ये और ये फल फुला फुला आज हमारे साथ कम्प्लीट मेरे कब्जे में है,
अब हर चीज में हर चीज पूरी हो गई है मेरे कब्जे में है। अल्लाह ताला का फैसला क्या होता है, अतः मुदना लैलनो नहार, हमारा हुक्म आता है रात के किसी लम्हे में या दिन के किसी लम्हे में, तो सारा बाग भी गया, खेत भी गया, सब चला गया। हसीदा बस ऐसा करते जैसे काट की कोई ढेर खड़ा हुआ रहता है, घास का खाली ढेर बिल्कुल बेसमर वो हालत हो जाती है। कलम दगना बिलहम ऐसा चटियल मैदान हो जाता है, आलू मनाते हैं अरे भैया कोई था तो नहीं, कल तो कुछ है ही नहीं आते, ऐसा मैं सुन रहा हूँ कोई चीज यहाँ पर थी ही नहीं, ऐसा हो जाता है। अल्लाह ताला के करने और उसकी कुदरत के करीचुए समझ रखने वालों के लिए अल्लाह ताला ये चीजें और निशानियां आयतें बता रहे हैं। वल्लाहु मुतअइना दारिस सलाम, अरे तुम लोग इन चीजों की तरफ क्या दावत दे रहे हो, अल्लाह ताला जिस चीज की दावत दे रहे हो वो देखो कौन सी कैसे अजीब चीज है, अल्लाह सलामती के घर की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं, सलामती के घर से मुराद जन्नत। जिसको चाहे सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह ताला हिदायत दे देते हैं। किन लोगों के लिए, लिल्लज़ीन अहसनू, जिन्होंने भलाई की, भलाई की से मुराद ईमान और आमाल सालिहा दोनों ने अख्तियार किया, अल-हुस्ना कलिमे तैयबा पढ़ा हुआ ज्यादा उन लोगों के आमाल सालिहा और कमालात ईमान की वजह से और ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से नवाजिशात होंगी, यानी ज्यादा का मतलब अल्लाह ताला की जियारत, अल्लाह ताला की मुलाकात, अल्लाह ताला की दीद, अल्लाह ताला का दीदार, अल्लाह ताला की रुहियत और उनकी तरफ से खुसूसी इनायत। वला यरहक वुजूहहुम कतरुन वला जिल्ला, ये उनके ऊपर न तो कोई ना उनके चेहरों पर न तो कोई उगार होगा न कोई रुसवाई होगी, चमकते चमकते आग उताब वाले चेहरे, रोशन चेहरे होंगे। ये कतर और जिल्लत है, ये अहलुल कफरा वल फजरा कुरान मजीद की आखिरी पारों में मौजूद है। उन लोगों के चेहरों के ऊपर जी परागंदा गुबारी और परेशान हाली, इनकी आई सियाही और गर्द गुबार हटा हुआ और जिल्लत रुसवाई छाई हुई रहेगी। जो साहिब ईमान होंगे उनके चेहरे आबोताज वाले होंगे। उलाई का था वो जन्नत ही हम फिहा खालिदून, वो लोग जन्नत ही हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और वो लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई हैं, जजाऊ सही अतिम सैयतुन में मिल लिया, उन लोगों की जो मिसाल है उनको तो जजा मिलेगी, जैसा किए उनकी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे और जितना करेंगे उतना भरेंगे। होता रहा को हम दिल्ला, क्योंकि उनके फिक्रों में गति थी इसलिए उनके चेहरे पर भी उस बुराई के आधार और अतराफ पैदा हो जाते हैं। मालूम मिन अल्लाह इन नाकिन, मगर उन बदफिक्री से और बदअखलाकी से उनका कुछ काम बनने वाला नहीं है, बल्कि उनका कोई बचाने वाला भी नहीं। मालूम मिन अल्लाह इन आसिम, आसिम के माने बचाने वाला, अल्लाह के मुकाबले में कोई भी बचाने वाला नहीं। कान औफियत वुजूहुहुम फी अमलिन लैल मुज़लिमा, और वैसे बदअकीदा इंसानों के जो चेहरे होंगे कैसे होंगे, ऐसे हो जाएंगे जैसे रात के सियाह टुकड़े उनके ऊपर बिल्कुल परत चल गए हैं, स्याही के ऊपर स्याही, पत्थर के ऊपर पत्थर और परत के ऊपर परत चल गया है, इतना ज्यादा जिंदत तो रुसवाई उन लोगों के ऊपर चल जाएगी। बुलाई जब आग न, ये वो लोग हैं जो दोनों के होंगे उसमें उनको हमेशा रहना होगा। बस अल्लाह ताला हमें नायात की औरतें में तौहीद पर इस्तेकामत नसीब फरमाए और ईमान की मुकद्दरात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر
فسيقولون الله فقل فلا تتقون كذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيدون قل الله قل الله يبدأ الخلق ثم يعيدون فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن من افتراء من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم ग्यारहवें पारे का नौवां रुकु है सूरह यूनुस की इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुदरत के करिश्मे और अपने कमालात और तकलीफी निजाम के एतबार से अल्लाह ने अपने बहुत से करिश्मे जाहिर फरमाए और ईमान और तौहीद की तरफ इस्तदलाल पेश फरमाया आयतें और मौसम बहुत वाले हैं कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम من يرزقكم من السماء والارض تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے آسمان سے روزی دینے کا کیا مطلب اور زمین سے روزی دینے کا کیا مطلب آسمان سے روزی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بادلوں سے بارش اور پانی کو بچاتے ہیں پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جل تھل بناتے ہیں پھر زمین کے سروکار کی پیدا کرنے کے بعد آئے گرا کی تین دور کرنے میں کوئی جب انتظار کی بات نہیں ہے اور پھر کسی سے آئے گا تو ضرور کرے گا کسی کو انشاء کا موقع مل جائے گا چھوڑ دو پیغام کو تمہیں پہنچ جاتی ہے باقی وقت کو اس کے حوالے کرو تو اس کی آزاد پائے گا اور اگر تم نے اس کیا تو اپنے آپ جان میں جائے گا جب ان کے سامنے علم آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سمجھ کے ایمان کو دور کر دیں یہ سورہ توبہ کا ایک دن اور دس میں پارے کا ساتھ ہم اوپر آنے اللہ پاک کرم کرے اور مجھے اپنی آیات پر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وبارك على نبينا محمد وفي العام الذي أرسل الله من هذا المرام ربنا اغفر لنا وارحمنا وارحم المسلمين وارحم المسلمين